मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में हम लोग बाद में निर्धारित करेंगे, क्योंकि आज कुछ ऐसी खबरें हैं, मुझे लगता है कि इनके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल में बात करनी चाहिए। तो यदि मैं अलग से कोई बात न कर सकूं तो इन्हें ही आप मुख्य विषय का हिस्सा मान लें। पहली खबर आज के अखबारों में आपने पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। आप जानते हैं कि जो जनहित याचिकाएं हैं वो हायर जो जुडिशरी है उसी में ही दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जब भी हम जनहित याचिका दायर करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है, नॉट एट ऑल। कोर्ट सबसे पहले यह देखती है कि इसमें मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, जनहित से संबंधित जो मामले होते हैं, और यदि नहीं बन रहा होगा तो उसे रिजेक्ट कर देती है, और यदि उसे लगता है कि नहीं बन रहा है तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और इसके बाद फिर उस पर सुनवाई शुरू होती है। वो डेट देती है और सुनवाई शुरू होती है और फिर बाद में अपना वो निर्णय देती है। तो ये जो मामला है ये खासकर चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाए जाने से लेकर है। आप जानते हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश जो राजनीति की दृष्टि से और खासकर सांसदों की संख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भारत को अभी तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं, और ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव हो रहे हैं, हालांकि हो तो विधानसभा के रहे हैं, लेकिन इसका पर्याप्त प्रभाव आने वाले लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो याचिका दायर की गई है वो इस बात के लिए की गई है कि कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो घोषित किए हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और इसके लिए जो बकायदे निर्देश दिए गए उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पहले बकायदे निर्देश दिए गए हैं कि आप जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएंगे उसके बारे में आप पूरी जानकारी अखबारों में देंगे, आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो उनके आप डिटेल्स देंगे ताकि पब्लिक को पता लग सके, और बकायदे ये भी दिया हुआ है कि इस तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता, वो सारे नियम कानून निर्धारित हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देखिए, हो नहीं पा रहा है जब मैं कह रहा हूं तो उसके दो पक्ष हैं। पहला तो यह है कि राजनीतिक पार्टियां निर्देश के बावजूद ऐसा क्यों कर रही हैं, और दूसरा यह है कि अगर वे ऐसा कर रही हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियां अगर ऐसा कर रही हैं तो फिर निर्देश देने वाली जो एजेंसी है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, वो क्या कर रही है। दोस्तों, यही आकर के सबसे बड़ा संकट उठकर खड़ा हो जाता है। भारत में यह स्थिति शायद सबसे ज्यादा है कि देखिए, जो नियम कानून बने हुए हैं वो नियम कानून बने ही इसलिए हैं कि उनका पालन किया जाए, और अगर नहीं किया जा रहा है तो उसका पालन कराया जाए। पालन कराए जाने के लिए बकायदे एजेंसियां हैं, लेकिन अगर एजेंसियां जिनकी ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उसका कार्यान्वयन कराएं, अगर वही नहीं कराएंगी तो स्थितियां बदतर होती चली जाएंगी। इस मामले में भी लगभग यही हो रहा है, और सीधी सी बात है कि जब हम चुनाव सुधार की बात करते हैं, अपने स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, तो दो बातें इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यह कि राजनीति को अपराधियों से मुक्त किया जाए, और दूसरा है कि हमारी राजनीति में जो धन बल का प्रभाव बढ़ रहा है उसे रोका जाए, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना डिसीजन क्या देता है, और फिर डेफिनेटली उसका जो डिसीजन होगा अपने आप में बहुत माइलस्टोन होगा। फ्रेंड्स, आज के अखबारों में आपने दो शब्द पढ़े होंगे, माओवादी और नक्सलवादी। छत्तीसगढ़ में खासकर कुछ नक्सलवादी मारे गए हैं, उसको लेकर के अखबारों में कभी इसका माओवादी शब्द भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, कभी इसके लिए नक्सलवादी शब्द भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इनफैक्ट ये है क्या, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, नक्सलवाड़ी एक जगह है पश्चिम बंगाल राज्य में, एक जगह है। कुछ साल पहले वहां बकायदे कुछ लोगों की बैठक हुई थी, और ये वे लोग थे जो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, तो इस स्थान के नाम पर फिर उनके जो विचारधारा को लेकर के आगे फिर जो समूह बने उसका नाम हो गया नक्सलवादी। जो माओवादी हैं, बेसिकली जो माओ है वो चीन के क्रांतिकारी रहे हैं। माओ ने चीन में बकायदे किसानों के माध्यम से कम्युनिस्ट क्रांति को रूप दिया था, और उसके बाद फिर चीन कम्युनिस्ट कंट्री बन ही गया। जब हम मार्क्सवाद कहते हैं तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स सबसे मूल विचारक थे। जो विचार दिए हैं वो कार्ल मार्क्स ने दिए हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों को फिर आगे लोगों ने अपने अपने ढंग से इम्प्लीमेंट किया, उसमें परिवर्तन किए, उसमें एड ऑन किया, कुछ जोड़ा। तो लेनिन ने अपने ढंग से मार्क्सवाद की व्याख्या की तो वो लेनिनवाद हो गया, और जब माओ ने अपने ढंग से व्याख्या की तो माओवाद हो गया। ठीक है, माओ ने एक बात कही थी और वो कि क्रांति जो है वो बंदूक की नाल से निकलती है, है ना। उस समय 12 बोर की बंदूक हुआ करती थी, तो बंदूक की नाल से निकलती है, यानी कि क्रांति जो है वो हिंसात्मक होती है, बिना हिंसा के क्रांति नहीं हो सकती, ये उन्होंने कहा। अब आप जो नक्सलवादी जो है उनके विचारों को और माओ के इस विचारों को जोड़ दीजिए तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि नक्सलवादी भी जो है वो हिंसा का सहारा लेते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं। दोस्तों, एक शब्द है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल में पढ़ रहा था तो उसमें मुझे मिला, और वो शब्द है BAYERN, बायरन। अब उच्चारण एग्जैक्ट क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली यह एक जंगी जहाज का बेड़ा है जो जर्मनी का है, और ये कल इसके बॉम्बे पहुंचने की संभावना है, जो हमारा मुंबई का पोर्ट बंदरगाह है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि ये माना जा रहा है कि इसके आ जाने के बाद जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चीन की जो स्थिति है उसको काउंटर करने में, उसका प्रतिरोध करने में जो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अक्सर आप इसके बारे में पढ़ते भी हैं, मेरे डेली ऑडियो लेक्चर में आपने सुना भी होगा, और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो बकायदे आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा कि किस तरीके से चीन लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाह रहा है ना। इसके लिए वो अलग अलग तरीके अपना रहा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर चीन का दबदबा कायम हो जाता है तो इससे केवल भारत को नुकसान होगा, नॉट एट ऑल। पूरी दुनिया इसको लेकर के चिंतित है। क्वाड इसी को लेकर के आप यूं कह लीजिए मूलभूत रूप से बना हुआ है, जिसमें चार देश हैं। दूसरे देश भी समय समय पर इसको लेकर के चिंता जाहिर करते हैं, जिसमें बकायदे यूरोपियन यूनियन भी है और जर्मनी उसी का ही एक देश है, सदस्य है। क्योंकि अगर आप हिंद प्रशांत क्षेत्र को खारिज कर दें या उस पर एक देश का दबदबा हो जाने दें तो जो विश्व व्यापार है बुरी तरह से बाधित होगा। तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर के पूरी दुनिया कोशिश करेगी कि चीन ऐसा न कर पाए। अब यहां मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को ले लीजिए, तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगभग लगभग कुछ एक ही नेचर के होते हैं। जैसे हम अभी चीन की बात कर रहे हैं तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन कैसे बढ़ता चला जा रहा है, ये एक बात हो गई इंडो पैसिफिक रीजन। दूसरा, जो ट्रेड वार चीन और अमेरिका के बीच में चल रहा है वो एक दूसरा प्रश्न बन जाता है। तो इस तरह से कुछ ही प्रश्न होते हैं, बस वही अलग अलग तरीके से थोड़े बहुत घुमाओं के साथ पूछे जाते हैं। अब आपको लगेगा कि फिर ये पूछा क्यों जाता है एक ही तरह के, एक ही टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, यहाँ आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी और इसे गांठ बांध लीजिए और इसे लिख करके बकायदे यदि आप चाहें तो अपने स्टडी टेबल के सामने टांग भी दीजिए, और वो ये कि प्रश्न पुराने होते हैं लेकिन उनके उत्तर नए हो जाते हैं। ये सिविल सर्विस की डिमांड है, प्रश्न पुराने होते हैं लेकिन उत्तर नए हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडो पैसिफिक पर अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंडो पैसिफिक एक कोई बहुत स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, स्थिर क्वेश्चन नहीं है कि अब इसमें कोई विकास नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लगातार इस पर घटनाएं घटित हो रही हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप ये घटित होती हुई घटनाओं के साथ नहीं बह रहे हैं तो आप चाहे कुछ भी लिख करके आ जाइए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही करेंट अफेयर्स का रोल है। अगर आप करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार नहीं करते हैं, अच्छे से तैयार करने कि ढेर सारा आपने जमावड़ा इकट्ठा कर लिया है, नॉट एट ऑल। वो जो महत्वपूर्ण बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, अपेक्षा की जाती है कि आप इन्हें जानेंगे, और इसके लिए थोड़े से ही टॉपिक होते हैं। आप अभी जो एग्जाम हुआ है उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं आप उठा करके देखिए तो पता लगेगा कि अगर आप टॉपिक को देखें तो टॉपिक तो बहुत थोड़े से ही होते हैं, उनके पूछने में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन उत्तर उनके नए हो जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, तब मेंस की अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको दो एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का है और दूसरा दैनिक भास्कर का है। ये खासकर असमानता को लेकर है। आप जानते हैं कि अभी विश्व आर्थिक फोरम दावोस में चल रहा है, उसमें एक रिपोर्ट जारी की गई है असमानता को लेकर के, विश्व असमानता को लेकर के, और बहुत ही चिंता व्यक्त की गई है कि अगर यही इसी तरह से बढ़ता रहा तो इससे आर्थिक हिंसा की स्थिति आ सकती है। चलिए, इस पर अब दो एडिटोरियल कमेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे, और कैसे अब इस असमानता को दूर किया जाए इसके बारे में अलग अलग आपको व्यूज मिलेंगे। जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये कहता है कि जो धनी व्यक्ति हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए, सरचार्ज जिसे आप कह लीजिए, और फिर जो वो टैक्स होगा उसका उपयोग किया जाए कुछ ऐसे कार्यक्रमों के लिए कि असमानता दूर हो। लेकिन जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे तो उसने इससे बिल्कुल खंडित किया कि इससे कुछ होना जाना नहीं है, भारत ने ऐसा कर लिया है, ये स्थायी समाधान नहीं है। तो क्या है समाधान? उसने कहा कि सीधी सी बात है कि आपको जो इकोनॉमिक के रास्ते में जो बाधाएं होती हैं, आर्थिक एक्टिविटीज के रास्ते में, उन बाधाओं को आप दूर कीजिए और इकोनॉमिक मोबिलिटी को बढ़ाइए। जो हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन्हें तेज कीजिए। जब आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी तो देश समृद्ध होगा, और जब देश समृद्ध होगा तो फिर ये असमानता कम हो जाएगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सजेशन है। यही तैयारी का तरीका होता है कि आप असमानता के लिए कुछ पेज निर्धारित कर लें और उसमें जहां भी आपको इस तरह की बातें मिलें उन्हें आप नोट कर लें। बहुत खूबसूरत तरीके से आपका वह टॉपिक तैयार होता चला जाएगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के लिए अब अलग से कोई वक्त नहीं है, तो जो भी बातें मैंने आप सबसे की हैं आप इन्हें ही मुख्य विषय मान लें। तो न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं, मंजुला तिवारी शहडोल मध्य प्रदेश से, यशविंदर कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और प्रियंका रे खरुपेतिया असम से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।